छात्रिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरस्तुते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो गिरःकातर्यायुना पुत्रेति तन्मयतया सर्वो भवेतु तं सर्वभूतहृदयम् तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति तं न मां चर। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद द्वितीय अध्याय हमने कृष्ण की अंतर्ध्यान लीला के संबंध में 3-4 दिन तक हमने वर्णन किया और कैसे भगवान की उन्मुख मोहिनी और माया के द्वारा अपने समस्त लीला परिकरों को गोलोक या द्वारका में ही रहने दिया और उनसे में मिलित जो देवता थे उनको अपने अपने स्थान पर पहुंचा और बद्ध लोग जीव उसको दूसरे रूपों में देखा। उन्होंने जदुकुल का विनाश देखा, कृष्ण के पैरों में वो तीर लगा देखा और दास संस्कार इत्यादि देखा। यहाँ तक कि पराशर और सौनक आदि ऋषियों ने अपने संहिताओं में भी ऐसा वर्णन किया, वो भी माया के द्वारा भी। अब दूसरे अध्याय में बतला रहे हैं गोविंद भुज गुप्तायन दारावत्यं कुरुद्वह अवासित नारदो अभिक्षम कृष्ण उपासन लाभ। गुरु महाराज जी एक ही यही श्लोक बोलते थे,
एक महीना
नहीं, जहां पर भी जाते यही श्लोक और विभिन्न प्रकार से उसकी व्याख्या करते, दशम स्कंद नहीं छूते थे और जहां भी जाते यदि पाठ करना होता ये और वक्तृता देना होता तो युक्ति प्रमाण के सहित में सनातन धर्म के संबंध में। तो विक्रम महाराज भी उस समय गुरु महाराज जी नहीं पाठ करते तो वो करने तो यही पाठ करते गोविंद भुज गुप्ताया। साधारण इसका अर्थ है हे पुरुषोत्तम, नारद कहीं बास नहीं करते थे किंतु कृष्ण भजन की लालसा, कृष्ण आराधना की लालसा होती तो गोविंद के भुजाओं के द्वारा रक्षित द्वारका में अनेकों बार आते थे। तात्पर्य क्या? गो गोविंद नारद अवासित नारदो अभिक्षण कृष्ण उपासना लालसा। कृष्ण ने अपनी भुजाओं से द्वारका की सब समय रक्षा की, इसलिए कली का प्रवेश वहां नहीं था। और कली के अंदर में किसी का श्राप भी वहां पर नहीं लगता था, नहीं जाता था। नारद जी किसी जगह गोदोहन काल के अतिरिक्त अधिक नहीं ठहर सकते थे, उनका अभिसंपात था। दक्ष प्रजापति हजारों संतानें उत्पन्न कर और उनको देखा जे पढ़ने के लिए कहां भेजे गुरुकुल में, ये नारद जैसा और पंडित नहीं मिलेगा, सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, इसलिए नारद जी के आश्रम में उनको पढ़ने के लिए भेजा। उन्होंने पढ़ाया और पढ़ाने के बाद में जबकि उन्होंने अध्ययन समाप्त कर लिया तो घर लौटे ही नहीं, भगवान का भजन करने के लिए चले। इसके बाद में फिर तो वो आया दक्ष प्रजापति, हमारे लड़के कहाँ गए, तो वो तो घर गए, तो घर तक पहुंचे नहीं तो कहाँ गए। उन्होंने ठीक से बतलाया नहीं जो वो वन में चले गए, कहाँ चले गए। उन्होंने कहा देखो इस बार फिर हम लड़कों को भेजेंगे और तुम उनको अच्छी तरह से पढ़ाना और माता पिता की सेवा करें और हम जो कार्य कहेंगे उसमें वो करेंगे। प्रजापति कहता क्या, प्रजाओं को उत्पन्न करो, विवाह शादी करो लाखों लोग और प्रजा उत्पन्न करो, इसी से भगवान की आराधना हो। तो लड़के माने मानते नहीं, फिर उत्पन्न हुआ फिर भेजा। तो नारद जी तो दूसरी शिक्षा नहीं जानते, वो तो वही जानते हैं जो प्रहलाद महाराज जी को पढ़ाया। फिर उन्होंने भगवत भजन की शिक्षा दी, धर्म अर्थ काम मोक्ष और या राजनीति कूटनीतिक ये सब नहीं दी शिक्षा, और वही शिक्षा दी। अब तो कुछ दिनों के बाद में जब उनका अध्ययन समाप्त हो गया तो वो लोग भी घर नहीं लौटे। वो खोजते खोजते आया, उनसे पूछा हमारे लड़के कहाँ हैं, तो वो तो लौट गए, पढ़ करके फिर लौट गए, उनकी विद्या समाप्त हो गई तो घर नहीं लौटे, तो कहाँ गए। देखा जी ने ऐसी शिक्षा दी जे वन में चले गए, हमारे पास लौटे नहीं। तो वो बड़ा क्रोधित हुआ और साप दिया, तुम गोदोहन काल के अतिरिक्त कहीं एक जगह नहीं ठहर सकते, जाओ तुमको भी संपाद। तो नारद जी से बोले जी बहुत अच्छा हुआ, अब इनके लड़कों को ही पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अब तो सारे विश्व ब्रह्मांड में घूमूंगा और सर्वत्र प्रचार करूंगा, उनके लिए अभिशाप ही पर हो गया। इसलिए नारद जी उस अभिशाप के कारण और जगह में नहीं रह सकते थे, किंतु द्वारकापुरी में जबकि कृष्ण की आराधना की इच्छा होती तो एकांत चित्त से आराधना के लिए द्वारका में आ जाते, उस समय उसका अभिशाप नहीं लगता और महीनों आया और दिनों तक रह करके उनकी सेवा कर। गोविंद भुज गुप्ताय, गोविंद की भुजा के द्वारा परिरक्षित, जिस समय में मथुरा से द्वारका में सब लोगों को ले गए, रात में सब लोगों ने देखा कि वहां विराट भवन में वहां है और देखा कितनी गुरुकुल बन गए हैं, उनकी गुरु की संख्या ही दी गई है जो मास्टरों को पढ़ाते हैं, मास्टर पढ़ाते थे कितना,
1,56,00,000
1,56,00,000 लिखा है कहीं। इतने टीचर थे, पढ़ाने वाले थे, तो जदकुल के लड़के कितने होंगे, इसी से अंदाजा लगाया सर। तो वहां पर नारद जी जाते थे इस प्रकार, कौन नाराजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजे सर्वतो मृत्यु उपास्यम अमरोत्तम। अहो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु अवश्य भावी है, वो कृष्ण के चरणों की सुरों में उत्तम जो है कौन, शंकर ब्रह्मा इत्यादि, यही लोग इनकी आराधना करते हैं, उन प्रभु की आराधना कौन नहीं करेगा। तमेक धातु देवर्षि वासुदेव गृहागतम अर्चितम सुखम मासीनम अभिवाद्यम। एक समय देवर्षि वासुदेव जी के घर में, वासुदेव जी के घर में द्वारका में पहुंचते ही यज्ञ हो रहा था, जब यज्ञ को बंद करा दिया, यज्ञ का फल आ गया, यज्ञ का फल हो आ गया। और आजकल लोग यज्ञ कराते हैं, साधु जो है ऐसे हुए भी नहीं कम है, तो यज्ञ को बंद कर दिया, यज्ञ का फल आ गया, इसलिए सत्संग, अब साधु आ गया तो अब सत्संग होगा, उसमें भगवान की लीला कथाएं होंगी और उस लीला कथाओं में भगवान का तत्व तो अपने आप वर्णन हो जाए। हम लोग भी जगति धाम का एक फल है स्पर्श करने का, किंतु असल फल क्या है, यदि साधु न रहे तो धाम का महात्मा कौन बतलाएगा, उसमें रुचि कौन लाएगा, लीला कथाओं में रुचि भी नहीं होगी। इसलिए साधु संघ में हरि कथा धर्म सुनिश्चित पुंसा विश्वक्षेन कथा सुजा यदि साधु संघ में हरि कथा में रुचि नहीं हुई तो और सब कुछ हराने पर भी जीवन उसका सफल नहीं। यहां तक कि हरिनाम भी यदि कोई कर रहा हो और सेवा भी कर रहा हो और सत्संग के हरि कथा में रुचि यदि नहीं हुई, लीला कथाओं में या तत्व कथाओं में, कुछ दिनों के बाद वो हरिनाम करना छोड़ देगा और सेवा करना भी छोड़ देगा और महाविषयी हो जाए। इसलिए जिस समय हरि कथा हो रही है जहां तो सब कामों को छोड़ करके हरि कथा श्रवण करना है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि पानी पिएगा, आप पानी नहीं पीऊंगा, पानी पीने के लिए तो ये दुर्दशा भी, अब आप दिन रात हरि कथा करें। तो वो दिन में भी करते थे रात में करते थे कि नहीं ये तो पता नहीं, क्योंकि वो तो दोनों में सोने वाले कोई नहीं थे, ऐसा कहीं दिन रात ही होता था।
नहीं तो रात को प्यास लगेगा, तो हो जाने पर लगेगा। जो लोग
वो सुखदेव जी गोस्वामी की हरि कथा के माध्यम से बहुत से लोग आत्मवादी और ये सब थे, वो सब भक्त हो गए उनकी कथाओं में ऐसा। तो वसुदेव उवाच,
हु विल ट्रांसलेट, वेयर इज दैट पर्सन, अरे वो Where is Rangana?
He's doing simultaneously with you.
Can you? I told you that you should be ready for that.
Simultaneously.
Oh, usse nahi hoga.
Shrimad-Bhagavatam, canto 11, chapter 2. So far, we have heard how Krishna has performed his pastime of disappearing from the vision of the people of this world. This pastime was seen in two ways. By the influence of Vimukha Mohini Maya. By the influence of Unmukha Mohini Maya. The energy of Krishna, which acts upon those who are attentive in his service. So by the action of Unmukha Mohini Maya, it is seen that Krishna and his associates, they became apakat, unmanifest. They entered their apakat lila. And the devatas, the demigods who entered into the bodies of those nitya parikars who became unmanifest, they returned to their positions in the heavenly planets, Devalok. So then, for those who are Vadajiv, conditioned souls, they had a vision of this disappearance pastime made by Vimukha Mohini Maya, the energy of Krishna which affects those who are averse to Krishna. What did they see? They saw that the whole dynasty was destroyed, and Krishna also died, and his cremation ceremony went on also. So now, Srila Gurudev is coming to a very famous verse, Govinda Bhuja Bhuktanam. This verse was explained in so many ways by our Pana Gurudev, Nityananda Krishna, Vishnupati, Srimad Bhakti Pranaya, and Keshava Goswami Maharaj. He would give many, many explanations of this verse. So, means that residents of Dwarka, they are protected by the arms of Govinda, Sri Krishna. So some examples are being given. Actually, Narad Rishi, he has no business to do in Dwarka, but he used to go there very regularly. Why? Because he was very greedy to have the darshan of Krishna and render service to him. So Krishna, he always protected Dwarka with his own arms, so that it was not possible that any ill effect could enter into that dham. We know that Narad, he could not stay in any place longer than the time that elapses while milking a cow. But he often used to go to Dwarka and spend several days there. How is it possible? Srila Gurudev gave some background history to this. Once, Daksha Prajapati, he was thinking, how can I educate my sons? So then he decided, in this world, who is as learned as Narad? Narad is very expert, he knows all Shastra. So, if I send my sons to the ashram of Narad, then they'll get a very good education. So, he sent his sons, the high ashrams, 100,000 sons. And they came to the ashram of Narad and performed their education. Then they left the ashram to return to their home. But Daksha came to Narad and said, where are my sons? Oh, I don't know. I think they returned. Did they return to your home? No, they did not return. What happened? After hearing the conclusion of all the shastra from Narad, then they did not go to their homes, but they went to the forest, and there they engaged themselves in devotional service. They became renowned. So then, Daksha, again, he made 100,000 sons, Shabalashvas, and he told Narad, I am giving you my sons to educate, so teach them properly. Teach them the real principles of spiritual life, like serve your mother, serve your father. You can serve God by creating progeny, populating the universe. So, Narad Muni, he could not give this teaching. Why? He only knows one teaching. His only teaching is Shuddha Bhakti. He has no concern with Dharma, Artha, Kam, Moksha, religiosity, economic development, the fulfillment of material desires, and liberation. He has no concern with these things. So then those sons, after they completed their study, they left the ashram to return home, but they also disappeared. Again, Daksha came, where are my sons? Oh, you did this same shiksha again. You gave the same teaching. And I told you to teach them properly. But again, you gave them the teaching whereby they became renounced from this world and went to the forest. So I'm giving you a curse. And the curse is that you'll not be able to remain in any place longer than the time it takes to milk a cow. So when Narad Rishi, he heard this curse, he was overjoyed. He said, very good. Now I will travel here and there without any entanglements and preach the glories of Shuddha Bhakti throughout the universe. So, Narad, he could not stay in one place for a long time, but he used to come to Dwarka, and there he would stay for several days at a time and become absorbed in one-pointed aradhana, worship and service of Shri Krishna. How is it possible? Because the Dwarka was completely protected by the arms of Shri Krishna. So no inauspicious influence could enter there. Even this place was outside of the jurisdiction of the curse of Daksha Prajapati. So, Krishna, when he was in Mathura, one night, in the night, he transferred all the residents of Mathura to Dwarka by his mystic power. And this city was so huge, so vast, with many buildings and roads. So you could have given an example, how vast is Mathura? So in Dwarka. In that city, the professors of the Gurukuls who were teaching the children numbered 1,56,00,000. This is what? 15.6 million teachers. So if the teachers were 15.6 million, then how many children were there in the Gurukul? We can just imagine. So once, Vasudeva Maharaj, he was doing yajna in his palace, and one day,
Vasudeva Maharaj was doing yajna, and Narad came and he stopped the yajna.
The father, father bola? You told anything, father word?
No.
Very good. Yeah? Go on. Okay.
So, one day, Vasudeva Maharaj was doing yajna in Dwarka, and Narad Rishi arrived there. When Narad Rishi arrived, what did Vasudeva Maharaj do? He just stopped his yajna. No need to do any yajna. Why? Because the fruit of yajna has arrived. If you do yajna, then you try to complete the yajna so you get the fruit of the yajna. But if halfway through the yajna, then a sadhu comes like an arrow, then stop your yajna. Because the fruit of all activities is only sadhu sangha. So, now the fruit has come, Narad. Finish the yajna, sit down, and listen to a harikata from Narad, the lips of Narad Rishi. So, if one would do dharma, religious activities, it has a fruit. But the fruit of dharma is what? Oh, temporary thing. It will not give taste in harikata, ruchi in lila kata. This taste in lila kata only comes by association, sadhu sangha. Therefore, in Srimad Bhagavatam, it's stated, dharma sunastita punsa visvaksena kata suya nam pariye didiratim shrama eva hi kevalam. One may perform his dharma very, very carefully, according to all rules and regulations. But if, after performing all of these things, he does not awaken a taste in listening to Hare Kata, then all of that very perfectly and expertly performed religious activity was completely a waste of time. So, if there is a chance for Sadhu Sangha, and in Sadhu Sangha, a chance to hear Hare Kata, then one should do this. This is problem over anything. If you're chanting Harinam, stop chanting Harinam and listen Harikata. If you're doing Seva, oh, stop your Seva also and come and hear Harikata. Harikata is the prominent thing. Srila Gurudev gave another example. When Srila Shukadev Goswami Pad was speaking Srimad Bhagavatam many days and nights to Prashit Maharaj, after several days, he said,
Okay.
After several days, then Shukadeva Swami Pad, he said to Prashit Maharaj, Would you like some water? Are you thirsty? Would you like some water? But Pritchard Maharaj, he refused. No, I don't want to take any water or anything. Go on. Speaking so that I can hear how you talk. So, Pritchard Maharaj. So he did not say, but anyway, internally the thought came in his mind, oh, it is due to wanting a glass of water that I got cursed to die in 7 days. So he was, no need to stop for water, please, go on, tell him, carry this out.
Vasudev Uvacha. Bhagavan. भवतो यात्रा स्वस्थे सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पित्रो उत्तम श्लोक वर्तमाना भूतानां देवचरितं दुखाय च सुखाय च सुखाये वही भूत साधुना तादृशात्म अच्युतात्मा भगवन यहां पर नारद जी के लिए वसुदेव जी भगवान शब्द का प्रयोग कर किसके लिए भगवान शब्द का प्रयोग हो सकता है भगवत तत्व वालों के लिए भगवान जो हैं कृष्ण से लेकर के और शेष ये सब भगवत शब्द वाच्य हैं और बंध और मोक्षवित जितने हैं वो सभी भगवत तत्व वाच्य इसलिए सदगुरु हो भाव बंधन जनता है मोचन करना ये कैसे होता है भाव बंधन और कैसे होता है मोचन उसको भी गुरु कहा जाता है याद रखो तो इसलिए नारद जी को यहाँ पर भगवत शब्द से कहा गया इसलिए अपने गुरु को भी यदि सदगुरु हैं भगवान संबोधित करने में कोई हर्ज नहीं और प्रत्येक शिष्य अपने गुरु को प्रभुपाद कह सकता है प्रभुपाद माने क्या प्रभु के पाद पद्म को देने वाले प्रभुपाद या उनके चरण कमल कोई हर्ज नहीं है किंतु वैष्णव लोग अपने अपने कुछ वैशिष्ट बना रखते हैं इसलिए आधुनिक काल में प्रभुपाद के शिष्यों ने यद्यपि उनके शिष्य हुए और प्रभुपाद को कहे जा सकते हैं किंतु किसी ने स्वीकार नहीं किया यह शब्द केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के लिए प्रभुपाद यदि इस्कॉन वाले कहें कि आप लोग हमारे गुरु जी को प्रभुपाद क्यों नहीं करते शिक्षा गुरु तो कहते हैं प्रभुपाद करने में दोष क्या है तो इस्कॉन वाले जितने गुरु हैं उनको शिष्य उनको प्रभुपाद कहे तो और अच्छा है तो वो क्यों नहीं कहते
आपने आपने प्रश्न पूछा था दयाम में तो 4-5-6 साल पहले
वो शूट कर देंगे
तो उन्होंने बताया अगले नाइट में जो खुराना
किंतु ऐसी रीति चली यदि उन लोगों ने रीति बनाया तो प्रभुपाद के जितने शिष्य ऐसे रीति बनाया तो उनके शिष्य हम लोग क्यों नहीं मानेंगे हमारे शिक्षा गुरु हैं सब कुछ है प्रभुपाद कहने कोई हर्ज नहीं है तभी उनके नियम पर हमको आदेश पर चलना है तो भगवान भवतो यात्रा स्वस्थे सर्वदेहिना आपकी जो यात्रा है समस्त प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है स्वस्थ माने कल्याणकारी कृपणानं यथा पित्रो उत्तम श्लोक वर्तमाना जिस प्रकार से कृपणान छोटे छोटे बच्चों के लिए माता पिता का आगमन शुभ कारक होता है, चाहे उत्तम हो, मध्यम हो और चाहे कनिष्ठ हो, पिता समदर्शी होता है, उनमें समान होती है, तो भी गड़बड़ी रहती है। किंतु साधु लोगों का ऐसा नहीं, साधुओं की ऐसी महिमा है कि उनके आगमन से निकृष्ट उत्कृष्ट सब जीवों का मंगल होता है। समदर्शी होने के नाते यथार्थ समदर्शी, उसमें भी कैसा होगा, कनिष्ठ मध्यम, मध्यम उत्तम में आएगा। जिसको हरि कथा में रुचि नहीं है उनको हरि कथा में रुचि आएगी, जिनको रुचि है उनको निष्ठ क्रमश आसक्ति और ऐसे आएगा। माता पिता का दर्शन जिस प्रकार से उत्तम मध्यम और उत्तम मध्यम और अधम तीन प्रकार के पुत्रों के प्रति प्रीति के कारण होता है, उसी तद्रूप समदर्शी साधु बने का समागम सब सबके लिए बराबर होने लगा। और क्या, भूतानाम देवचरितम दुखाय सुखाय च, देवता लोग हैं उनकी उपासना करने से दुख और सुख दोनों होगा। कहीं की प्रजाओं ने वृष्टि मांगा और देवताओं ने वृष्टि दी, अति वृष्टि, एक जगह बाढ़ आ गई डूब गया, एक जगह सूखा रह गया, वैषम्य में उनकी कृपा में है। जैसे ब्रज में भी हुआ, सर्वत्र ऐसा होगा, कहीं सूखा अभी, कहीं पानी से प्रलय हो रहा आसाम की तरफ में और उत्तर बिहार इत्यादि, इधर कहां कहां सब, और कहीं कहीं सूखा पर और कहीं बरसा हो, देता हूं वो उनसे जो मांगो वही दे देंगे। रावण ने जो मांगा तो उन्होंने दे दिया, और मरो और बचो इसका दायित्व देवताओं पर नहीं है, जैसा मांगो वैसा दे देंगे। किंतु साधु लोग या कृष्ण ऐसा नहीं करते, ठीक है ना, आमी विज्ञ विषय कौन, वो विषय क्यों दो, तो विषय सुख मांगने पर कृष्ण नहीं देते, उसका ऑपरेशन कर देंगे। ऐसे साधु लोग भी नारद इत्यादि हैं, किसी के मांगने से ही वैसा नहीं दे देंगे, जो उनके लिए कल्याणकारी होगा वो वही देंगे। ओहो, साधुओं का चरित्र देवताओं के चरित्र से तुलना नहीं की जा सकती, इतना वो साधु लोग हैं, उन्नत हैं। देवताओं में ईर्ष्या भी रह सकती है, काम भी होगा, क्रोध हो सकता है, और नारद जी के जीवन चरित्र में ऐसा नहीं, उनका अभिसंपात भी मंगल के लिए होगा, जैसे जमला जी के लिए होगा। नारद जी ने जिसको अभिसंपात दिया उसको भगवान की कृपा होगी। जैसे देवताओं के क्षेत्र में अतिवृष्टि होने से कहीं इष्ट और कहीं अनिष्ट हो जाता है, अभी उदाहरण के द्वारा बतलाया, साधु का चरित्र नहीं ऐसा है। जीव मात्र के लिए सुखकर और कल्याणकारी होता है, भाव बंध मोचनकारी होता है, देवता लोग पूजा पाने पर तुष्ट होकर के इष्ट फल प्रदान करते हैं, साधुगण ऐसा नहीं, देवताओं को प्रसन्न के या दुर्गा काली इत्यादि और जो मानव भौतिक सुख उसको दे देंगे, इसका फल क्या होगा वो दुर्गा देवी इसके लिए दाई, जो मांगो वही देंगे, मरो आबादी, वो सब विष है। साधु लोग उनकी पूजा करो और न करो, वो कृपा करते हैं। हमारे सुखदेव गोस्वामी जी, नारद जी, उनकी पूजा करो और न करो, ऐसे सदगुरु भी पूजा करो न करो वो प्राणी मात्र के ऊपर में कृपा करते
हैं।
So now, in this verse of Srimad Bhagavatam, 11th canto, chapter 2, Sri Vasudeva Maharaj, he is addressing Narada Rishi. How does he address him? He addresses him as Bhagavan. So generally, this term Bhagavan, we use for Krishna, Krishna's true Bhagavan Swayam. But here we see that Narada Rishi is using this term Bhagavan to Vasudeva Maharaj is using this term Bhagavan to address Narada Rishi. One definition is that one who knows the path of bondage and path of liberation. One who knows the path of bondage and also how to be liberated from bondage, he is called Bhagavan. And therefore, the term Bhagavan can be used as an address for Sadhguru. There's no harm in addressing Guru as Bhagavan. This example is given by Narada Rishi here. So in this connection, Srila Gurudev brought up a very relevant point that just as Vasudeva Maharaj, he has the right to address Narada Rishi as Bhagavan. There's no defect in this. So in the same way, every disciple has the right to address their own Guru Parapadma by the name Prabhupada. All disciples can call their Gurudev Prabhupada. Why? Prabhupada means that person who bestows upon the disciple the service of the lotus feet, the path, the lotus feet of Prabhu, that means Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is called the Prabhupada. So every sadhguru, he gives the service of the lotus feet of Krishna to his disciple, therefore he can be addressed as Prabhupada. There's no defect in this. But we see that after the disappearance of Srila Bhakti Siddhanta Sadhuri Thakur, his disciples, it was their feeling that, oh, how is it possible that any of us can be addressed by this name Prabhupada? This is their feeling out of deep honor and love for their Gurudev. So, when in ISKCON the devotees address their Gurudev as Prabhupada, then some of the ISKCON brothers, they objected to this. And then they were also became the object of criticism. They are not good because they are objecting to us calling our Gurudev Prabhupada. But Srila Gurudev raised the point. Now, if any of the disciples of Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada of ISKCON, if any of his disciples will accept the name Prabhupada, then how will the other godmothers react? How will they react? In exactly the same way. So they should preserve their judgment. So, technically speaking, according to etiquette, there's no harm in using this name. But the disciples of Srila Bhakti Siddhanta Sarvati Thakur, and today we see the disciples of Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, they have accepted this riti, this convention among themselves that no one should take the name Prabhupada. So then, Vasudeva Maharaj continued to glorify Narada Rishi. He said, O Narada, you are Kalyan Dayak. You give auspiciousness to every living entity. So, Srila Gurudev gave one example. Here's an example. If one father, he returns his children are there. So the children may be young or older, they may be well behaved or not well behaved. But the father, he sees all of his children equally. But only his own children, not the children of others. But the sadhu, he is far superior to a father. Why? Because all types of living entities, whether they are abominable or whether they are very well, highly cultured, whatever is their behavior or situation, the sadhu, he sees everyone equally and only acts in such a way as to bring about their benefit, their welfare. So, if someone is in the lower stage, they don't know anything, by the mercy of Guru, they will get faith. If someone has taste, if someone has no ruchi, by associating with the sadhu, then they'll come into the stage of ruchi. If someone else, they have ruchi, by his association, they'll be uplifted to the stage of asakti. And in this way, whatever stage living entities are in, the association of a sadhu caters to their upliftment. So, Vasudev Maharaj, he said, if you worship the devatas, then what result will come? The mercy of the devatas is not impartial. There's partiality in the mercy of the devatas. They give mercy to those who worship them. We see that Mahadev, Lord Shiva, if someone worships him and asks for a benediction, he'll say, yes, take. He will not consider whether or not this benediction is actually good for that person. They may be asking something, they may be asking for something which is actually quite destructive for them and detrimental to their progress in spiritual life. Yet Mahadev anyway, he'll just give that to them. But what is Krishna's mood? Ami vigya saimarka. I am intelligent and this person is foolish. So they're asking for something which will be their downfall. So I'll not give them that. I'll give them mercy in such a way that gradually they'll give up all their material desires and they'll be able to taste the nectar of the service of my lotus feet. So, just as the devatas may bestow benedictions which are not auspicious for the living entities, but Krishna, he will not give what the living entities ask for, he will give them what's good for them. So sadhu is the same. His mercy is of the same category. So the sadhu, he gives benefit to all. No one can make a comparison between the glories and the character of a sadhu and the glories and the character of the devatas. In the demigods, you can see they still have some envy, they have some anger, some lust. All these things are in the devatas, but these qualities are never in sadhu. He's transcendental to all of these things. If someone will worship the devatas, they will give the fruit of that worship. But this fruit is temporary. And what kind of fruit is it? They will give happiness, which is related to the physical body. So ultimately, enjoyment of the senses, this is not happiness because it transforms and turns into suffering. So the devatas, their mercy is, or they're giving suffering. So this cannot really be called mercy. Also, if one will do puja of a demigod, he may give you his so-called benediction. But if you will not worship him, he will neglect you. But a sadhu is not like this. If one will worship a sadhu, or one will not worship a sadhu, anyway, the sadhu will give you mercy, regardless of whether you worship him or not. So, Shukadeva Goswami, Narad Rishi, whoever they meet, they bestow mercy upon them. And the Sadguru is in the same category. Whoever he meets, they worship or they don't worship. But somehow or other, he tries to uplift them in their Krishna consciousness. One more example. The mercy of the demigods, Gurudev explained how this is by Shamya. Not impartial, it is partial. So it's like a rain. Sometimes you see when rain comes, in one area of the country, there's a drought. There's no rain there. And in another area, there's a complete flood. So the mercy of the demigods is like this. But the mercy of the sadhu is not like this. Everywhere, freely, equally to all living entities, his mercy is always available to everyone. Even Prasadam gives a curse, this curse is also for the benefit. Like Narad with the Yamal Arjun trees.
Atah Atyantikam Chema Prichamo Bhavato Anibha Sansareshmin Khanartho Api Satsanga Sevati. अतः अत्यंत क्षेम साधु लोग जहां पर मिलते हैं वहां पर क्या होता है अत्यंतिक क्षेम किसको कहते हैं अत्यंतिक मंगल किसमें मंगल है मुक्ति में भी मंगल नहीं है पूर्ण वैकुंठ में भी पूर्ण मंगल नहीं है मंगल मथुरा द्वारका की प्राप्ति भी पूर्ण मंगल में इसलिए आतांतिक क्षेम का ब्रज में और उसमें भी आतंतिक क्षेम का शक्करस में नहीं बात्सल्यरस में नहीं मधुर रस में इसलिए आतंतिक क्षेम तो वहां तक साधु दे सकते हे अनघा हे निष्पाप संसारे अस्मिन खनार्थापि ऐसे साधु क्षेम देने वाले अत्यंत मंगल प्रदान करने वाले ब्रज भक्ति भी प्रदान करने वाले कृष्ण को प्राप्त कराने वाले नंदनंदन को ऐसे महात्माओं का यदि संग हो जाए तो एक क्षण में भी उसका कल्याण हो इसलिए शबधी निर्णाम अत्यंत मंगलदायक है इसलिए आधा क्षण खनार आधा क्षण भी हो तो साधुओं का संग करने से जो भावबंधन से मुक्ति दिला करके कृष्ण के चरणों में ब्रज प्रेम को भी दे सकते किंतु आजकल हो नहीं रहा है भाई विषयों से साधु लोग जोर करके भी लाते हैं किंतु वो फिर विषय में ही चले जाते हैं बड़ी मुश्किल से वो विषय ही चाहते हैं और साधु लोग कुत्ते की दुम में जैसे एक मन घी लगा करके मलते हैं तभी विषयी लोग ऐसे ही बड़ा मुश्किल है किंतु यदि निष्कपट हो तो हो सकता है हाँ यो इसमें मन नहीं लग रहा नीरस मन ना भजन रस सुने भजन रहो ओ तुम लोग बतलाओ जब क्या प्रसंग रखे अब हमको तो आता है भजन रस अधिक ऊंचा भी नहीं चाहते भजन
auspiciousness. So what is the absolute auspiciousness or the extreme point of auspiciousness? Sadhu can give mukti. Oh, this mukti is not the atyantik kshem. It is not purna manga, complete auspiciousness. He can bless you that you go to Vaikuntha. This is not complete auspiciousness. Atyantik kshem. It is manga auspicious to be in Vaikuntha. But not completely.
Bulala.
So to be in Dwarka, to be in Mathura, also auspicious. But not the atyantik kshem. What is atyantik kshem? Oh, Vrindavan. But in Vrindavan, to attain the service in Satyarasa, this is not atyantik. Neither is Vatsalya. But to attain service in Madhurya Rasa, this is atyantik kshem, or the extreme point absolute auspiciousness for the living entity. So here, Vasudeva Maharaj is saying that this sadhu, in the full sense, he can bestow this service of Krishna in Madhurya Rasa. Then he's saying,
what is the line? Shana?
Ata atyantikam kshemam prichyamo bhavato anagha sansare smin khanartho api satsanga samadhi.
Khanartho api. Here Vasudeva Maharaj is saying khanartho api means that the mercy of the sadhu, by which one becomes fully liberated from the bondage of material existence, by which one attains prema and the direct service of the lotus feet of Shri Krishna, this mercy, Shanadopi, it can come in 1 second, less than a second, in a split second, in a moment. So then one may raise the question, how is it that we don't experience that, or this kind of mercy, being liberated, attaining prema and the service of Krishna lotus feet, is not coming in 1 second? So, if someone, they are determined, they have full desires to attain sense gratification, then it's very, very difficult for them to accept the mercy of the sadhu. Very difficult for them to come out of the bondage of material existence. But if one will approach, why Srila Gurudev said they are like the tail of a dog. You know, if you take the tail of a dog and you try to make it straight, you can tie a stick to the tail of the dog. You can massage the tail of the dog with you. And make it completely straight. All the hairs are in a straight line like this. But then in one moment, as soon as you remove the stick, then bam, and it becomes crooked again. So the living entities who are